ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे।
सब लोग बड़े प्रेम से एक बार पुकारिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम हरे राम
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे
राम राम हरे हरे।
आज 18 मई का दिन है 2018 शुक्रवार के दिन हम यहाँ पर पेंटकर पाड़ा में बैठे हुए हैं और आप सबको पता है कि अधिक मास चालू है। कितने लोगों को नॉलेज है इसके बारे में? अधिक मास चल रहा है। हाँ प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। कितने लोगों को पता है कि अधिक मास चल रहा है? बस बहुत कम लोगों को पता है। एनीवेज अधिक मास 3 साल में एक बार आता है और बहुत लंबी कहानी है उसकी। मैं आपको आप में से एक को एक लिंक भेज दूंगा, उसमें पूरा जानकारी लेक्चर है पूरा उसका। लेकिन संक्षेप में अगर बताना है आपको तो ये बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण मंथ महीना है मनुष्य जीवन के लिए। सर्व कल्याण करने के लिए ये महीना सबसे लाभदायी है। अगर आप मनुष्य हैं, मनुष्य कहते हैं अपने आप को, तो मनुष्य के लिए सबसे लाभ किस समय मिलता है? तो वो पुरुषोत्तम मास, अधिक मास। इसके बाद नंबर 2 का मास कार्तिक महीना, वो हर साल में एक बार आता है। अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। साल में 4 महीने होते हैं चतुर्मास्य के। चतुर्मास्य में कार्तिक महीना बहुत पावरफुल है। जो भी कुछ करेंगे ना भगवान के लिए, उसका लाखों गुना लाभ मिलेगा। 1 लाख गुना लाभ कार्तिक महीने में मिलेगा। हरे कृष्णा बोलेंगे ना तो 1 लाख बार बोलने का लाभ मिलेगा कार्तिक महीने में। और ये महीने में हरे कृष्णा बोलेंगे 16 लक्ष बार बोलने का लाभ मिलेगा। कार्तिक से 16 टाइम ज्यादा बेनिफिट ये महीने में। तो वो व्यक्ति मूर्ख ही होगा अगर वो ये महीने में कुछ नहीं करेगा तो। क्योंकि वो अगर आलसी भी है तो भी उसको इस महीने में करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा करने से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। इस तरह से ये महीने का लाभ है। इस महीने में नदी में, पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत बड़ा लाभ है। इस महीने में वैष्णवों को, संतों को दान देना का, भगवान के लिए दान देना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। भगवान का नाम लेना इसमें बहुत पावरफुल है। भगवान के मंदिर जाना ये महीने में बहुत ज़्यादा लाभ देता है। ऐसी सारी बहुत चीज़ें हैं। तुलसी को जल देने में बाकी दिन से ज़्यादा लाभ ये महीने में मिलता है। सिंपल सिंपल चीज़ें, कुछ बड़ा व्रत जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। तो 1 लाभ इसमें निरंतर भगवान की कथा सुनने का है। इसलिए अधिक मास में ना सब जगह पर कथाएं चलती रहती है। भागवत कथा, रामायण, पारायण, इसका गारायण, ज्ञानेश्वरी गांव में, महाराष्ट्र में इसके ही भजन कीर्तन चलते रहते हैं। क्योंकि इसमें जो करेगा उसको लॉटरी है पूरी। तो उसमें श्रीमद् भागवत जो है ना, उसको श्रवण करना बहुत ज्यादा शक्तिशाली है इसमें। तो मैं आपको एक सुंदर कहानी बताऊंगा जो आपको उम्मीद है अच्छी लगेगी और कुछ लाभ भी होगा उसको सुनकर। स्कंद पुराण में ये कथा आती है। स्कंद पुराण एक बहुत महत्वपूर्ण पुराण है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण ऐसे 18 पुराण में से 2 बहुत पावरफुल पुराण है। स्कंद में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जैसे पांडुरंग भगवान का महात्म्य वो भी स्कंद पुराण में है। जगन्नाथ भगवान का, जगन्नाथपुरी का महात्म्य भी स्कंद पुराण में है। ऐसे बड़े बड़े चीज़ों का नॉलेज उसमें दिया गया है। तो उसमें ये भी कथा आती है श्रीमद् भागवत के बारे में। श्रीमद् भागवत क्या चीज़ है, उसकी क्या महात्म्य क्या है उसका। तो सब लोग ध्यान से सुनिए, हाँ अगर नींद आती होगी थोड़ा सा खड़े हो जाइए, लेकिन सुनिए जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, हाँ बहुत अच्छा, धार्मिक, सत्यशील, तपस्या करने वाला, सत्य बोलने वाला, सद्गुण संपन्न, बहुत सुंदर, कोई आदर्श व्यक्ति था। उन्हें धन संपत्ति भी थी, क्योंकि अच्छा ब्राह्मण था तो लोग दान दक्षिणा भी देते थे, कोई कमी नहीं थी किस चीज़ की, पत्नी है घर में, लेकिन पुत्र नहीं है उसको। सब कुछ होने पर भी दुखी है वो, क्या अभी पुत्र नहीं तो कैसे करेंगे। नदी किनारे बैठा है, एक दिन रो रहा है, अरे साधु वहाँ से आते हैं, तो क्यों रो रहे हो? तो क्या करें महाराज, सब कुछ है लेकिन पुत्र नहीं है, कुछ बताइए महाराज क्या करना है। तो स्वामी जी जो आए थे वो त्रिकालदर्शी थे, मतलब इतने सिद्ध महात्मा थे कि उनको आंख बंद करने के ध्यान करेंगे ना तो आपका भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सब दिखाई पड़ेगा, क्या होने वाला है सब। ध्यान लगा के बैठे और देखे इसको पुत्र तो है नहीं, इसके नसीब में नो सन नो चाइल्ड। तो वो इतना डेस्परेट था, बोले महाराज जी आप तो संत हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी करो, मुझे पुत्र संतान प्राप्ति कर दो। बोले नहीं आपके नसीब में, नहीं नहीं चाहिए ही चाहिए। तो फिर संत महाराज ने करुणा के कारण कुछ उपाय सोचा, कुछ विधि किया और विधि करके खुद को एक फल दे दिया और कहा कि आपके पत्नी को उसको खिला दो और पत्नी गर्भवती हो जाएगी और पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये भी बताया क्योंकि आपके नसीब में नहीं है, ये तो ऐसे बाहर से अरेंजमेंट किया है उसका, तो ये दुख भी देगा आपको, होने का सुख भी देगा लेकिन बाद में दुख भी देगा। बोलो कोई बात नहीं, कैसा क्यों, पुत्र चाहिए, वो सबने पुत्र होने दो, आगे दुख भी देख लेंगे, कम से कम पिता तो हो जाऊंगा ना मैं, है ना। आप क्या बोलते हैं भाई 40 साल हो गए, भाई शादी तो करनी है, मैरिज कैसा भी हो, कुंडली जुलती हो नहीं, एक बार शादी करा दो, बाद में देखेंगे क्या करना है पत्नी के साथ, पति के साथ क्या करना है। अरे वो कुंडली नहीं मिलती आपकी, वो गुण भी नहीं मिलते नहीं है, वो कुछ दिखा रहा झगड़ा होने वाला है, डिवोर्स होगा, कोई बात नहीं, वो सब आगे की बात है, शादी तो होने दो कम से कम। ऐसा वो डेस्परेट था। अच्छा वो घर पे गया, फल लेके बड़ा खुश होकर घर पे गया। उसकी पत्नी का नाम है दुंदुली, अभी वो अलग मूड में है बाय द वे, ये अलग मूड में है। वो कैसे मूड में है, उसको बच्चा चाहिए ही नहीं। बोले कौन संभालेगा उसको, 9 मंथ्स को पेट में देखती हूँ औरतों को, इतना बड़ा पेट लेके घूमती रहती है, इतना कष्ट होता है उसमें, पेट दुखती है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, क्या क्या होता है, प्रेगनेंसी उल्टियाँ होती है, मुझे नहीं करना है सब ये बाबा, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, इनको वही बहुत पुत्र की इच्छा है, मुझे नहीं कुछ इच्छा है। तो लेकिन अभी वो दे दिया फल, अभी साधु का फल है तो अभी क्या करें, तो रख लेती है और अपने बहन को बुला लेती है डिस्कस करने के लिए भी क्या ये समस्या आ गई अभी। तो बहन गर्भवती होती है उस समय, शादीशुदा बहन है उसकी, तो वो कहती है अपनी बहन की भाव जो जानती है कि मेरे बहन जो उसमें इसमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसको, तो वो कहती है एक काम करेंगे, ये फल जो है ना ये आप गाय को खिला दो, पति को बताओ मत, बोलो खा लिया मैंने, और जाके गाय को खिला दो, गाय खा लेगी उसको, मैं गर्भवती हूं, जब मेरा बालक होगा ना तो हम डिक्लेयर करेंगे कि आप फल खा के गर्भवती हो गई हैं और तबीयत कुछ ठीक रहती नहीं तो मैं एकांत में रहना चाहती हूँ। फिर वो पति को नहीं मिलेंगे क्योंकि पुराने जमाने में ऐसा रिवाज था, आज भी वो रिवाज खत्म हो गया है, पति पत्नी गर्भवती हो गई ना तो बाद में कुछ गड़बड़ नहीं होता था, बच्चा होने के बाद 6 महीने के बाद दूध पिलाने के बाद समाप्त होने के बाद भी फिर वापस पति पत्नी मिलते थे, आजकल के जमाने तो कुत्ते बिल्ली का जिंदगी है। तो वो मान जाएंगे कि ठीक है गर्भवती तो भी क्या है, मिलेंगे हरे कृष्ण करेंगे, बोलेंगे कैसा है आप तबियत ठीक है ना, क्षेम कुशल देखेंगे, और आप एकांत में रहना अपने कमरे में और मैं भी रहूंगी, और जब मेरा बालक होगा ना तो मैं कहूंगी मेरा बालक गुजर गया, मतलब होता है ना कभी कभी डेथ, और वो बालक आपको दूंगी, और आप कहना कि मुझे मेरी डिलीवरी हो गई लेकिन कैसे कुछ रोग कुछ समस्या की वजह से दूध नहीं निकल रहा है, होता है ना कभी माताओं को दूध नहीं आता, ऐसे बोल देना, फिर मैं कहूंगी मैं भी जन्म दिया है बच्चे को, मेरा बच्चे का डेथ हो गया, मेरे पास दूध है, मैं आपके बच्चे को दूध पिलाऊंगी, ऐसे करके हम बच्चे को बड़ा करेंगे, तो आप भी फ्री मैं भी फ्री, दोनों तरफ से काम सोल्यूशन, अच्छा सोल्यूशन है। तो गाय को फल खिला देते हैं, इसको कहते हैं षड्यंत्र। चोरी, पूरा पूरा गलत काम। तो बुरे काम का बुरा नतीजा हमेशा याद रखना। तो फिर वो यथावकाश 9 महीने होते हैं, बहन बालक को जन्म देती है, वो सब नाटक पूरा उनका होता है। लेकिन होता क्या है, उनमें उसी समय गाय भी बच्चे को जन्म देती है, वो गाय ने भी फल खाया ना। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि गाय का बच्चा गाय नहीं होता है, वो मनुष्य का जन्म लेता है। मनुष्य बालक गाय के पेट से आता है, खाली कान गाय के होते हैं उसके, उतना गाय का हिस्सा उसके अंदर है। देखो साधु के मंत्र में और फल में कितनी शक्ति होती है ना? हम लोग कितना भी मैनेजमेंट करेंगे ना, लेकिन शादी साधु की पावर तो साधु की पावर ही होती है। आज साधु है ही नहीं, आप जानते ही नहीं साधु कौन है, लेकिन साधु जो जानते हैं, जिनको साधु की मुलाकात हो चुकी है, वो जानते हैं साधु का पावर आज भी क्या है, एक संत की शक्ति क्या होती है। तो वो भी हुआ बालक, अभी वो गाय तो अपनी है, तो गाय का बालक भी अपना ही है, तो गाय का दूध पीते पीते वो बड़ा हो गया, और ये अपनी मौसी का दूध पीते पीते बड़ा हो गया। क्योंकि माता का भाव गलत था, तो वो लड़का का नाम रखा दुंदुकारी, माता का नाम दुंदुली, बेटा का नाम रखा गुंदुकारी। ये गाय का बच्चा हुआ कान गाय जैसे है, उसका नाम क्या रखा, गोकर्ण, इसके कर्ण गो जैसे हैं, गोकर्ण नाम रखा। दोनों भाई एक घर के हैं, बड़े हो रहे हैं। गोकर्ण जो है वो गाय के गोद से संत के फल से पैदा हुआ है, तो वो खुद संत बन जाता है, एकदम भगवान का धार्मिक भजन पूजन करने वाला, सत्यवादी, सद्गुण संपन्न पिता जैसा बन जाता है, और माता जैसा दूसरा बालक बनता है। इधर लोभी, कपटी, षड्यंत्री, हाँ, गलत भाव वाला, इस प्रकार के चोर प्रवृत्ति वाला, दोनों जवान हो जाते हैं। एक संत बन के जवान होता है, एक ऐसे ही अपना उच्छृंखल है ना, उनाड़की बड़ा हो जाता है। तो वो जो बड़ा होता है, फिर उसको बुरी आदत लगती है, वो शराब पीने लगता है, उधर मारा मारी करो, किधर से दंगा मस्ती करो, किसी गाली दो, दादागिरी करो, आतंक मचाओ, कर होता है उसका। फिर बीच में वेश्या का मन भी शुरू कर देता है, वेश्या का भी जाना शुरू करता है। अब ये सब करने के लिए पैसे चाहिए ना, आपको दारू पीना है, आपको मांस खाना है, आपको कोई थोड़ी का कुछ करना है, वेश्या के पास जाना, तो पैसे चाहिए ना खिसे में बार बार उड़ाने के लिए। एक दिन आता है घर पे, बोलता है पिताजी मेरा हिस्सा दे दो, मुझे मुझे दे रहना यहाँ पर, मैं अपना अपना करना चाहता हूँ। बहुत घर में आतंक बचता है। तो साधु ने जो कहा था उसकी याद आती है, साधु ने बताया था आपको सुख नहीं है, दुख मिलेगा आगे, लेकिन आप जिद करते हो, ठीक है। तो साधु के बोल उनको याद आते हैं, कहा था उन्होंने, मैंने तो पिता बनने का कोशिश किया, लेकिन देखो कुछ सुख तो है नहीं उसके अंदर। तो बहुत घर में आतंक हो गया, वो माता को भी मार रहा है, दुंदुली को भी मार रहा है, पिताजी को भी मारने को जा रहा है, ऐसा आप सोच सकते हैं घर में कैसा आतंक मच रहा है। तो एक दिन फिर वो बहुत परेशान हो जाता है, बोलते हैं मुझे भी घर पे रहना ही नहीं है, मैं सब छोड़ के जाऊंगा, ये लो प्रॉपर्टी ले लो, तुम्हारा हिस्सा ले लो, जो करना है करो। गोकर्ण को भी अपना हिस्सा देते हैं, क्योंकि बंटवारा हो रहा है, तो वो इसको भी देना है, तो उसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते। ये तुरंत जाके ना दूर एक घर लेता है और 4 वेश्याओं को घर में रखना शुरू कर देते हैं। पहले तो जाके आता था, अभी तो उसमें 4 घर पे रखा उसने, और वो जारू वारू, फिर बाद में पैसा खत्म होने लगा तो चोरी डकैती चालू हो गया, सब हर गलत काम चालू हो गया। लेकिन जैसे पिता का संपत्ति प्राप्त हो गया ना बहुत सारा, तो वेश्याओं के मन में भी लोभ निर्माण हो गया, बोले अभी इसको ना मार देते हैं विष देके, ताकि सब दौलत लेके हम भाग जाएंगे। तो एक दिन वो 4 वेश्याएं मिलके षड्यंत्र बनाते हैं और उसको विष देते हैं अनजाने में, और ये मर जाता है। कौन? दुंदुकारी। ये जब मर जाता है तो ऐसे लोगों को क्या होता है मरने के बाद, जिसका खून किया जाता है, जो आत्महत्या करते हैं, जो अपघात में मरते हैं, उसका क्या होता है, वो भूत बन जाते हैं, क्योंकि जीवन का आकार पूरा नहीं हुआ है, उसको खत्म कर दिया गया, बीच में तोड़ दिया गया है, तो नया शरीर का गुंजाइश नहीं है उसको। जितना समय दिया है उतने आपको रहना पड़ेगा शरीर में, अपने शरीर को खत्म कर दिया तो प्रेत योनि में जाना पड़ेगा, और जो समय खत्म होगा उसके बाद में अगला शरीर का इंतजाम है, पहले नहीं मिल सकता है वो। इसलिए आत्महत्या करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आपको लगेगा कि जीवन में इतना कष्ट है हमारे, आत्महत्या कर लूंगा तो सब मुक्त हो जाऊंगा मैं ना, इसके झंझट से फ्री हो जाऊंगा, ऐसा बहुत लोगों को लगता है। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं, तो इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है कि क्यों है कि मैं हूं इसमें, इसलिए मुझे पीड़ा है, मैं नहीं रहूंगा तो पीड़ा खत्म हो जाएगी ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना पति रहेगा ना बच्चे रहेंगे ना सासू रहेगी ना सासू रहेगा ना ना ननंद रहेगी ना दीर रहेगा, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। तकलीफ सब इनसे है ना हमारी, धन से है, काम से है, इससे उससे, अगर मैं ही यहाँ से हट जाऊंगा तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी, मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं मैडम, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रहते हुए आपको जितना कष्ट है उससे अधिक भयंकर कष्ट तो भूत बनने के बाद में होता है, लेकिन वो दुर्भाग्य ऐसा है कि वो भूत बनने के बाद ही पता चलता है। पहले बताया तो विश्वास नहीं होता है। आप बोलेंगे सर आपको क्या काउंसलिंग करने में क्या तकलीफ है, तकलीफ तो मुझे हो रही है ना, आप तो अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी, आपकी पत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी सब अच्छा है, आपका धन दौलत भी ठीक है, आप मुझे काउंसलिंग दे रहे हो, मत करो मत करो, लेकिन मेरी तकलीफ क्या है मुझे पता है। इसलिए वो उनको लगता है विश्वास नहीं होता है, वो बोल रहा है कि मत करो ऐसे, बहुत कष्ट होगा आपको भूत प्रेत योनि में। फिर भी वो जब मर जाता है ना, फिर जब उसको कष्ट होते हैं बिना शरीर के, तब उसको लगता है अरे मैंने क्यों किया ऐसे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, वो रिटर्न नहीं उसमें, वापस नहीं है, चलो। तो ये भूत बनता है और अति भयंकर पीड़ा भोगना चालू कर देता है। तो वो ना अति अति भयंकर पीड़ा में वो भूत शरीर में प्रेत योनि में अपने भाई के पास आते हैं और कुछ अलग अलग संकेत से उससे बात करने का प्रयास करते हैं। वो भजन में बैठा रहता है तो उसको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है, है तो कोई नहीं लेकिन लगता है कोई मुझे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो वो ध्यान में बैठा है, सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करता है, तो उसको समझ में आता है कि मेरा भाई जो है ना मरा हुआ वो मुझसे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो और बहुत जोरदार गहराई में ध्यान करते हैं तो वो भाई उससे संपर्क कर सकता है। बोलता है भैया मैं पापी हूँ, बहुत प्रेत योनि में फंस गया हूँ और बहुत कष्ट भोग रहा हूँ, मेरे लिए कुछ करो, मुझे छुड़वाओ उस कंडीशन से, मुक्त करो मुझे इससे, बहुत ज़्यादा पीड़ा में हूँ, इतना कि बता नहीं सकता मैं आपको, शरीर नहीं है मुझे, मन बुद्धि है और तड़प रहा हूँ मैं, प्यास से भूख से गर्मी से उष्णता से भयंकर पीड़ा है, मैं वर्णन नहीं कर सकता उसका, लेकिन आप मेरे भाई हो, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं मैं जानता हूँ, लेकिन आप मेरे भाई हो, संत हो, मैं ये भी जानता हूँ, और आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो, उम्मीद है मुझे, तो आखिर भाई ही तो है, इसलिए वो कहता है कोई बात नहीं मैं संतों से चर्चा करता हूँ, संतों का संघ है, खुद संत है तो उसका संतों का परिवार है, जाके उनसे सलाह करता है कि ऐसे ऐसे मेरे भाई था, उसका इतिहास ये है, ऐसे ऐसे हुआ, उसका खून किया गया, वध किया गया षड्यंत्र करके, अभी वो मुझे आके विनती कर रहा है कि बचाओ, तो क्या करना चाहिए उसके लिए। तो सब संत लोग हैं ना, जितने बुजुर्ग संत हैं, तजुर्बेकार हैं, सब उसको एक ही उत्तर देते हैं, इसके लिए इसके नाम से श्रीमद् भागवत का पाठ करो। जैसे ही भक्त चरित्र और भगवान का चरित्र ये सुनेगा, उसके श्रवण मात्र से ये सब पाप से मुक्त होकर, ये प्रेत योनि से मुक्त होकर उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम क्या है, ये श्रीमद् भागवत जो है वेद व्यास ने लिखा हुआ है और उसमें केवल भक्त चरित्र और भगवान चरित्र का वर्णन है। भक्त में ध्रुव जी है, प्रहलाद है, कुंती है, पांडव है, भीष्मदेव है, जमदग्नि है, परशुराम है, प्रभु रामचंद्र का चरित्र संक्षेप में है, ऐसे बहुत लोगों का, गजेंद्र की कथा है, समुद्र मंथन की कथा है, क्या क्या सुंदर सुंदर चीजें हैं उसके अंदर, बहुत सुंदर कपिल भगवान का आविर्भाव का कथा है, शुरू से लेकर परीक्षित महाराज की कथा है, स्वयं जो सुन रहे कथा उनकी भी जीवन चरित्र कथा है, वो सब होने के बाद में दशम स्कंध में श्री कृष्ण भगवान का चरित्र है, 89 कथा है उसके अंदर भगवान की, अध्याय 89 अध्याय है उसके अंदर, 79 भगवान के आविर्भाव से लेकर भगवान के अंतर्धान होने तक सारी कथाएं उसमें दी गई है। उसके बाद 11-12 स्कंध है, कलयुग का वर्णन है, तो सुंदर शास्त्र है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मतलब गड़बड़ मतलब क्या, अरे ये व्रत करोगे तो अच्छा पति मिलेगा, ये व्रत करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, ये व्रत करोगे तो संतान अच्छी होगी, ये व्रत करोगे तो आरोग्य अच्छा मिलेगा, ये व्रत करोगे तो ये होगा, ये व्रत करोगे तो प्रॉपर्टी होगी, ऐसे ही बहुत सारे शास्त्र भी हैं, गलत नहीं है, सही है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ हेतु है कि ये करेगा तो ये मिलेगा, ऐसा कुछ ना कुछ, कुछ करेंगे तो लाभ क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा उसमें, ऐसा होता है ना भाव, उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भागवत में ऐसा कुछ नहीं है। भागवत में केवल आप सुनते जाओ और आपको क्या फल मिलेगा, भगवान से आपकी प्रीति बढ़ेगी, भगवान की भक्ति प्राप्त होगी, भगवान अपने हो जाएंगे, आप भगवान के हो जाएंगे, भगवान आपको सहारा देंगे, आप निर्भय हो जाएंगे, चिंता मुक्त हो जाएंगे और जीवन के अंत में मुक्ति प्राप्त करेंगे, भगवान का धाम प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के लाभ है उसके अंदर। आप क्या सोचेंगे, चलो कथा में बैठते हैं, अच्छा भाग्य बढ़ेगा तो घर में पैसा ज्यादा आएगा, बच्चे को नौकरी मिलेगी, बेटी शादी नहीं हो रही है, कथा सुनेंगे भगवान की तो वो शादी भी हो जाएगी उसको, अच्छा शादी हो चुकी है लेकिन पुत्र नहीं हो रहा है तो कथा सुनेंगे तो अच्छा पवित्रता होगी तो पुत्र भी हो जाएगा, ये भाव से लोग कथा में बैठते हैं। बहुत लोग आते हैं हेतु लेकर मन में, ये कथा सुनने में बैठने पर ना कोई अच्छा कार्य होगा ना कोई, तो पुण्य बढ़ेगा, तो पुण्य बढ़ने से हमारा थोड़ा सा सिचुएशन ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ भागवत में नहीं है। भागवत में जो भी है वो सब आत्म कल्याण के लिए है। तो फिर गोकर्ण जी जो है वो भागवत कथा शुरू कर देते हैं। कथा कैसे होती है, आप लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं, बैठे हुए हैं, कथाकार आया हुआ है, कथा कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कथा, ऐसे संत लोग आते हैं, उनका इंतजाम होता है, भोजन का इंतजाम होता है, मंडप बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, व्यासपीठ पे उनको बिठाते हैं, जो भी जैसा कि आपने किया है छोटा सा, वैसे सब कुछ इंतजाम होता है और गोकर्ण जी श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ करते हैं। ये जो है ना धुंधुकारी, वो भूत बना हुआ है, वो एक वो जिस पेड़ के नीचे बैठा है उस पेड़ की शाखा में आके बैठ जाता है, वो शाखा में आठ गांठे थी, सात गांठे थी, गांठे बोला पेड़ में कभी ऐसे गांठ रस्ते गांठ ऐसी बाबूला पड़े से गांठ रस्ते वैसे गांठ आठ थी, वो बांस में वो आके बैठ जाता है, कथा सुन रहा है, वो कथा कर रहे हैं वो सुन रहा है। जैसे एक दिन की कथा हो जाती है, एक गांठ टूट जाती है, सेकेंड डे सेकेंड गांठ भी टूट जाती है, थर्ड डे थर्ड गांठ, फोर्थ डे फोर्थ गांठ, ऐसे करके सात दिन के बाद में जब भागवत की कथा समाप्त होती है तो सातों गांठें गिर जाती है और भागवत समाप्त होते ही आकाश से एक विमान आता है, दिव्य विमान, समझता है देखिए कि वैकुंठ से आया हुआ है। आप गाड़ी देख के पहचान दो ना, गाड़ी में कौन सी गाड़ी है, कौन रहेगा आदमी उसके अंदर, कितना अमीर रहेगा, अगर कोई हुंडई लेके आएगा तो आप समझेंगे कि मेरा रोड का कोई अमीर होगा, ठीक है, मर्सिडीज गाड़ी लेके आएगा तो लगेगा मुंबई का कोई धनी आदमी आया। इस तरह से वो जैसे आता है ना, सबको पता चलता है कि ये वैकुंठ से आया हुआ विमान है, उसमें चार विष्णु के दूत उतरते हैं और ये जो भूत प्रेत का योनि में था उसको वैकुंठ का शरीर प्राप्त हो जाता है, चतुर्भुज, नीला रंग का चतुर्भुज शरीर प्राप्त होता है, चार भुजा वाला दिव्य शरीर प्राप्त होता है, जिसको शरीर ही नहीं था पहले, प्रेत योनि में था, प्रेत योनि नष्ट होकर दिव्य शरीर प्राप्त होता है, सब दिखाई पड़ता है सबको, अरे ये व्यक्ति कहां से पैदा हो गया, उसको वो चार लोग बड़े प्रेम से माला पहनाकर गीत गाते हुए स्वागत करके विमान में बिठाते हैं और उसको हवा पंखा देते हुए वो विमान उड़ के सबके आंखों के सामने वैकुंठ चला जाता है। मतलब एक कार्य सिद्ध हो गया ना, संत ने कहा था कि इसके उद्धार के लिए भागवत आवश्यक है, तो सब लोगों को शांति हो गई कि भाई जिस भाई के लिए भागवत किया था उसका उद्धार हो गया, वो वैकुंठ चला गया, दुख से मुक्ति हो गई, सब हो गया उसका। लेकिन भागवत तो हमने भी सुना था, और भाई बोल रहा है मैंने सुना नहीं, मैंने तो बोला था, मैंने बोला और वो सुना तो उसका ये परिणाम हो गया, लेकिन मेरे लिए विमान नहीं आया, ये भी प्रश्न होता है ना मन में कि सुनने वाले का उद्धार हो गया मेरे आंखों के सामने, लेकिन मैंने इतना मेहनत करके बोला और मेरे लिए क्या हुआ। तो फिर संतों का सलाह किया कि क्यों ऐसा हुआ महाराज जी, संत कहते देखो नींद कब आती है, जब आपका शरीर है तो नींद आती है, प्यास कब लगती है, जब शरीर है तो प्यास तो प्रेत योनि में लगती है, लेकिन शरीर होगा तो आप पानी पी के प्यास को बुझा सकते हो, भूख लगेगी तो खाना खा के उसको भूख को शांत कर सकते हो, लेकिन प्रेत योनि में भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना बिना खाने के लिए शरीर नहीं है। और नींद कब आती है, जब शरीर है तो नींद आती है, तो आप जग जाते हो, तो आप काम करते हो, लेकिन शरीर नहीं तो नींद कैसे आएगी, नींद का सवाल नहीं। तो कहते हैं कि आप लोग दिन में कुछ घंटे कथा करके शाम को विश्राम करते थे, फिर सुबह शुद्ध होकर खाना पीना जो भी कुछ है आपका कलेवन बाल भोग करके फिर कथा शुरू करते थे, फिर दोपहर का विश्राम है, फिर भोजन है, फिर शाम की कथा है, ऐसे करके आपने कथा किया है। लेकिन उसके लिए ना भोजन का इंतजाम है ना नींद का इंतजाम है। तो दिन भर में आप जो चर्चा कर रहे थे करते थे उसको ऊपर, उसको नींद तो है नहीं, तो रात भर उस पर चिंतन करता था, रिविजन। हो सकता है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि आज मैं जो कथा कहूंगा घर जाके आप उस पर चिंतन करेंगे या अपने भाई को बहन को मम्मी को बताएंगे या तो सोते हुए बिस्तर में भी कथा का चिंतन करते हुए सो जाएंगे, ऐसे मेरी उम्मीद है आपसे, प्रार्थना भी आपको। तो वो रात भर दिन भर किए हुए चर्चा का चिंतन किया करता था तब तक जब तक आप दूसरे दिन की कथा शुरू नहीं करते, फिर वो ध्यान से सुनता था और वही उस रात को चिंतन करता था। इसलिए 7 दिन 7 रात तक वो केवल भागवत में ही मग्न रहा और आप लोग सब लोग कथा बोलने वाले सुनने वाले सब सो गए, इसलिए आपके लिए वो मन नहीं आया। उसका एकाग्र चिंतन था, बीच में कुछ भोग नहीं है उसके लिए, कुछ खाना पीना खा के मजा कर रहा है, कुछ गा रहा है ना डांस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए, कुछ है ही नहीं, भोग करने का साधन ही नहीं, शरीर नहीं तो क्या भोग करेगा वो। तो वो डेस्परेट तो था ही वो एकदम, और भागवत का अमृत उसको मिल रहा है तो उसी में वो रममान रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर गोकर्ण ने कहा अभी हम दोबारा कथा करते हैं, उधर ही सेकेंड कथा शुरू हो गई, सेम थिंग रिपीट, सेम सभा बैठ गई और सबने निर्णय किया हम सोएंगे नहीं, हम खाएंगे भी नहीं, हम केवल या तो बोलेंगे और सुनेंगे या तो चिंतन करेंगे और कुछ बातें नहीं करेंगे। दुनियादारी की, क्या जलेबी कैसी थी, पूरी नहीं थी क्या, अरे क्या वो आज के खाने में तो फोलाव कम हो गया, ऐसा बातें नहीं करेंगे, कुछ बात ही नहीं करेंगे, खाली चिंतन करेंगे श्रीमद् भागवत का, समय पर कथा करेंगे, बाकी समय पर जगे रहेंगे चिंतन करते रहेंगे और उसे तपस्या में रहेंगे, कोई नींद वींद का काम नहीं। कुछ अभी निर्णय लेना अपनी, आपने आज निर्णय लिया कि आज कथा करना है तो कर लिया, हो गया एडजस्टमेंट हो गया ना पूरा, उसी तरह से 7 दिन 7 रात निर्णय कर लिया, निश्चय कर लिया तो संकल्प कर लिया तो फिर हो गया। 7 दिन इस तरह से कथा किया कठोर तपस्या में चिंतन में। जब कथा समाप्त हुई तो एक विमान नहीं आया, अनंत विमान आए, अनंत विमान, हर एक व्यक्ति के लिए एक विमान आया, हर एक विमान में 4 4 दूत हैं विष्णु के, वैकुंठ के आए और हर एक 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को स्वागत कर रहा है और सभी लोगों का शरीर 4 भुजा वाला वैकुंठ वाला बन जाता है, गोकर्ण का भी, उसके सभी श्रोताओं का भी, और सबके लिए अलग अलग विमान में स्वागत करके गीत गाते हुए लेकर सब विमान वैकुंठ की ओर चले जाते भगवत धाम में पहुंचे। ये श्रीमद् भागवत का भाग्य है, इसकी महिमा ही है। और ये श्रीमद् भागवतम जो लिखा गया है लोगों को पता ही नहीं है क्या श्रीमद् भागवत है, काफी लोगों को गीता पता है, भगवत गीता बोलते रहते हैं, स्कूल में कॉम्पिटिशन भी होता है, वो अध्याय बोलने की प्रतिस्पर्धा भी होती है, एनुअल डे में कुछ बच्चे आके बोलते हैं 15वां श्लोक 15वां अध्याय 12वां अध्याय ये वो चलते, कुछ तो कुछ आइडिया आपको, ये भी आइडिया है कि भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन को बताया था, ये भी मालूम है, लेकिन भागवत के बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन मेरी आपको ये विनती है कि ये सब जो है ना, भगवत गीता हो या भागवत हो या कोई पुराण हो या कोई और कुछ चीज हो या और कुछ आध्यात्मिक वस्तु हो, वो किसके लिए है वो सब बताओ, मनुष्य के लिए है, मनुष्य के लिए है, पंछी के लिए है क्या, कि शेर के लिए है, कि हाथी के लिए है, कि गाय के लिए है, कि बंदर के लिए है, ये किसी भी जीव के लिए नहीं है, ये केवल मनुष्य जीव के लिए। और हम बोलेंगे अरे हम तो ब्राह्मण तो है नहीं, हमको संस्कृत का ज्ञान तो है नहीं, हम तो ऐसे ही कई कास्ट में है, हमारा पढ़े लिखे भी नहीं है और धनी भी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, किधर से भागवत पढ़ेंगे, इधर 2 वक्त की रोटी का ही प्रॉब्लम है तो भागवत भी तो किधर पढ़ेंगे। हम बोले ये ले लो, ये फ्री में ले लो, फ्री में हम आपको फ्री में दे रहे हैं, अरे फ्री में लेके पेट में भूख लग रही है तो भागवत थोड़ी पेट भरेंगे, ऐसे कई समस्याओं की वजह से ये सब चीजों की ओर मुड़ते ही नहीं हम लोग, लेकिन फिर भी है तो मनुष्य के लिए ही। आपको डिफिकल्टी इसलिए, वो जानवर के लिए नहीं, मैं बनता है वो आपके लिए ही है, वो आप नहीं लेंगे ये आपका चॉइस है, लेकिन है तो आपके लिए ही। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो सब जितने ज्ञान दिए गए हैं, पुराण है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवत है, ये सब हम और आपके लिए है। और हम और आप बोलेंगे अरे प्रभु जी आप तो पढ़े लिखे हो, आप आप सब पढ़ सकते हो, आप सब जानकारी है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मनुष्य कितना भी गरीब होगा, कितना भी अमीर होगा, कितना भी पढ़ा लिखा होगा, कितना भी अनपढ़ होगा, कितना भी जवान होगा या बुढ़ा होगा या बालक होगा, या कितना भी सुंदर होगा या कुरूप होगा, किसी भी जाति का होगा, काला कलूटा आदिवासी होगा या तो शहर का कोई ब्राह्मण होगा, ये दोनों तरफ के जितने भी मैंने बताया ना वर्णन आपको, इंडियन होगा, फॉरेनर होगा, जो भी गोरा काला होगा, जितने भी आपके भेद हैं, कुछ भी होगा, वो सबके लिए ये लागू है और कोई भी चीज को रोक नहीं सकते। अगर आपकी इच्छा है तो गरीब से गरीब होते हुए आप कर सकते हो। अरे हमारे महाराष्ट्र में कितने संत थे ऐसे, सुदामा की कथा सुनी आपने, खाने को एक दाना भी नहीं था घर पे उसके, लेकिन भगवान का कितना महान भक्त था वो। उसका भूखा रहना या उसका गरीबी होना उसके भक्ति में बाधा नहीं बना कभी, और बोला भी नहीं कभी अरे क्या फायदा इतना भक्ति करके, खाने को रोटी भी नहीं है, किधर है भगवान हमारे, ऐसा भी नहीं बोला वो कभी, आनंद में था वो। तो गरीब होके ऐसा जरूर नहीं गरीब होने का भक्ति नहीं कर सकते, खाली अमीर ही कर सकते हैं। और अमीर कैसे भक्ति करेगा, इतना धन आने के बाद तो लगेगा ये भोगूंगी वो भोगूंगी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, ये पहनूंगी ये गाड़ी घुमाऊं या किसी लड़के को घुमाऊं, क्या करूं, मतलब पैसा जो है ना जेब में बोलता है, याद रखना। मोबाइल रखेगा ना मोबाइल, तो वो शांत बैठे देगा ना आपको, बार बार निकाल के देखेंगे उसको, वो बोलेगा उठा मुझे देख मैसेज आया है, है कि नहीं। आप चाहते नहीं हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बार बार वो टिंग 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 करके बुलाएगा आपको, अरे मैसेज आया है, अरे एमएमएस आया है, अरे व्हाट्सएप आया है, कोई वीडियो आया है, ऐसा इंपॉर्टेंट है, कुछ चल रहा है, कुछ एग्जाम चल रही है, तो उसका कुछ क्वेश्चन आया होगा उसके अंदर। जेब में पैसा रखेगा ना, अभी आप एक काम करो, कल सुबह ऑफिस में आते ना घर का 5,000 रुपया जेब में लेके आ जाओ, कुछ मत करो, काम करते रहो, बार बार वो पैसा आपसे बोलेगा कुछ कुछ खरीदो कुछ करो, अनुभव करके देखो आप, मैंने ये अनुभव करके देखा हुआ है। जेब में पैसे होंगे तो आप खर्च करेंगे ही, थोड़ा करेंगे उसमें लेकिन करेंगे जरूर, तो ऐसी शक्ति है हर चीज में, वैसी शक्ति साधुओं के संग में है। साधुओं के संग में रहेंगे तो आप भगवान का भजन करेंगे, उस वातावरण में रहेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रेरणा मिलेगी। आप शराब नहीं भी पीते होंगे लेकिन आपका घर आप शराब घर शराब के अड्डे के सामने होगा तो एक दिन जरूर पिएंगे आप, क्योंकि वातावरण आपको लुभाएगा, उसकी बू आएगी या खुशबू या बदबू कुछ भी बोलो आएगी, वो लोग आएंगे और आपको फिर बोलेंगे अरे लो यार। सिगरेट पीते रहेंगे, आप नहीं पीते होंगे लेकिन सिगरेट पीने वालों के बीच में रहेंगे आप तो जरूर आप सिगरेट पीएंगे। संघ का परिणाम ना, जैसा संग वैसा रंग, आप जैसे हो वो आपके जिन लोगों के साथ रहते हो वैसे रहते हो। भक्तों के संग में रहोगे ना चाहते हुए भी कभी ना कभी तो हरे कृष्णा बोलोगे ही आप, यार भी भक्ति विधान में काम कर रहे हैं इनके अंडर भी, क्या इधर तो क्या क्या रूल बना के रखा है, हाँ भाई ठीक हरे कृष्णा ठीक है सर हरे कृष्णा इतना तो बोलेंगे। हाँ यहाँ कोई गलत शब्द उच्चारण करके गाली देने का कोई काम नहीं है, अलाउड ही नहीं ना। संघ का परिणाम होगा ही आपको। मराठी में एक कहावत है पता है आपको, ढवळ्या शेजारी पवळ्या बांधला वाण नहीं पण गुण लागला कुछ नहीं था खाली बाजू में बांध दिया था उसको, गुण लग गया उसका, ढूसी मारने का और चिल्लाने का। बैल को होता है ना, वो बैल शांत था लेकिन वो एकदम ऐसा अलग बैल के हाथ बांध दिया उसको तो वो भी ऐसा ही हो गया उसके जैसा ही संघ का परिणाम होता है। तो भक्ति विधान का संघ का लाभ क्या है कि आपको बिना पुण्य के आप लोग यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे किसी को इंटरेस्ट हो या ना हो वो आपकी इच्छा है, लेकिन बिना आपके पिछले पुण्य से आप यहाँ नहीं आ सकते हो। क्यों? तो शास्त्र में लिखा है कि बिना सफिशियंट, हाँ महाराष्ट्री वर्ड पुरेसर, जितना बहुत सारा उतना हुए बिना आप भगवान के नाम से अपना परिचय नहीं कर सकते हो, भगवान के शास्त्र से परिचय नहीं कर सकते हो, भगवान के भक्त से नहीं मिल सकते हो, भगवान के मंदिर में आपका प्रवेश नहीं हो सकता है। कितने लोग ऐसे होते हैं माँ को मंदिर लेके जाते हैं और खुद बाहर बैठते हैं, माँ बोले जाओ मैं बैठता हूँ बाहर आ जाओ, नहीं बाहर कुछ ना कुछ पान खाएंगे ऐसा बात करेंगे मंदिर में नहीं जाएंगे, क्योंकि तब तक आपका भाग्य का उदय नहीं होता है ना पूरा अच्छी तरह से, तब तक ये चीज आपको लाभ नहीं हो सकती है। भक्ति विधान में मरीज बन के भी आएगा ना तो भाग्यवान जीव है, क्योंकि वो इस जगह पे आ रहा है जहां पर कंटिन्यूस भगवान का नाम चल रहा है, सुबह की प्रार्थना में भागवत जी का श्लोक में प्रवचन दिया जा रहा है, सत्संग हो रहा है, प्रसाद खाने को मिल रहा है, तिलक लगाए और भक्त लोग आके ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हरि बोल बोल के, हरे कृष्ण बोल के ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई साधारण चीज नहीं है ये। सब दुनिया में मास्क खिलाते हैं, क्या क्या होते रहता है, इस जगह पे कुछ नहीं होता है, केवल भगवान का ही सानिध्य है। आते ही तुलसी का दर्शन होता है, प्रभुपाद जी का, संत का दर्शन होता है, तो बिना भाग्य के इसमें कोई आ नहीं सकता है। मरीज बन के भी नहीं, और नौकरी करने के लिए आप नहीं आ सकते हो, लेकिन आप सब लोगों का पिछला कुछ पुण्या ही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर हो। लेकिन अगर इतना सारा पुण्या ही होने पर भी अगर आपको अभी इंटरेस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं भगवान। लेकिन फिर भी गलत काम से आप बच जाएंगे, यहाँ पर कोई करप्शन नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई गलत काम नहीं होता यहाँ पर, तो अच्छे वातावरण में आपका पुण्य बढ़ेगा, न जानते हुए भी बढ़ेगा, उसको कहते हैं संचित। आप जान नहीं रहे हो लेकिन आपका हो रहा है अकाउंट। जैसे कि अमीर व्यक्ति का जो बच्चा होता है ना, उसको पता नहीं है लेकिन उसका सब भविष्य बना हुआ है, जब बड़ा हो जाएगा, पति पिताजी बुढ़े हो जाएंगे, अपने आप उसके नाम पे पिताजी की प्रॉपर्टी आ जाएगी, खाली उसको घर में रहना है बस, पिताजी से झगड़ा नहीं करना है, पिताजी से कभी विरोध नहीं करना है, पिताजी का मन नहीं होगा तो भी पिताजी का हाँ हाँ यस सर यस सर करना है, बस बने रहना है वहां पर उसके बेटा बनकर, झगड़ा करके मैं जाऊंगा निकल के ऐसा नहीं करना है, कैसे भी करके यस सर यस पापा करके रहो। जब वो गुजर जाएंगे उनका सारा प्रॉपर्टी जो पसीना बहा के बनाया है अपने आप आपके नाम पे हो जाएगा। वैसे भक्ति विधान में बने रहो, न जानते हुए भी आपके अंदर भगवान की पुण्याई, भगवान का आध्यात्मिक लाभ, दिव्यता आपको प्राप्त होती रहेगी, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक जगह पर काम कर रहे हैं। श्रीमद भागवत का एक श्लोक का कथा रोज सुबह भक्ति विधान में होता है। अभी केवल स्टाफ लोग नहीं सुन रहे हैं, स्टाफ तो 50-60 खड़े होते हैं लेकिन पूरे माहौल में 200 लोग बैठे रहते हैं डॉक्टरों के इंतजार में, और वो खाली बैठ के इंतजार कर रहे हैं तो क्या होता है, क्या अनाउंसमेंट हो रही है, तो वो सुनने लगते हैं। ठीक है भाई, काम तो है ना, अभी डॉक्टर का नंबर तो उधर 12 दिख रहा है, मेरा 47 है, तो मुझे तो बैठना ही है, चलो वो देख लेते क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनने लगते, कभी कुछ टर्न होकर सुनते, कभी ऐसे सुनते हैं, वो पूरा भागवत का कथा सुनते हैं, और फिर कथा वाले को कभी कभी आके ऐसे प्रणाम भी कर लेते हैं ऐसे ही, मतलब उनको बोला अरे बाप रे कितनी अच्छी बात सुनी ने सुबह सुबह बैठकर, ये भाग्य है। तो इसलिए आप लोगों को विनती है कि ऐसी कथाएं हमारे हॉस्पिटल में चलती रहती है, हर मंगलवार को होती है दोपहर को, हर बुधवार को सुबह होती है, साल में 5 बार उत्सव होते हैं, रथ यात्रा रोज चलती है, भगवान रोज रथ में बैठकर घूमते हैं, दर्शन देते हैं, आप जा नहीं पाएंगे तो आपके पास आ जाते हैं, पेशेंट जा नहीं पाता उसके पास पहुंच जाते हैं, इतना भाग्य किधर होता है बताओ। आप जाना चाहते हैं लेकिन इतना वायर लगा हुआ है तो कैसे जाएंगे, तो भगवान आपके बेड के पास आ जाते हैं, आप उनको फूल फ्री में आपको फूल मिलता है, आप चढ़ा सकते हो, दीपावली में आप दीपक दिखा सकते हो, पड़े पड़े हाँ बिस्तर में लेटे हुए हैं, 4 प्लास्टर लगे हुए हैं, इधर पट्टी लगा हुआ है, फिर भी हाथ पकड़ के आपको ऐसा करते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, प्रसाद देते हैं, फिर हम कहते हैं प्रार्थना करो कुछ करना है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं बिस्तर पे। ये अद्भुत चीजें हैं बहुत, ये हमारे लिए भी आश्चर्य की चीजें हैं कि हमारे यहाँ हो रहा है, इसलिए आनंद है हमको। जाके आप हिंदुजा में बोलो कि एक आपको एक विनती है, हिंदुजा मैनेजमेंट को एक विनती है कि एक ना 50,000 खर्च करके एक रथ बना दो, भगवान का मूर्ति रखो और उनको चलाओ मंदिर में, हॉस्पिटल में सब चलाओ, हो सकता है। अच्छा ये मंजूर नहीं है, एक काम करो एक जन्माष्टमी का उत्सव बनाओ हॉस्पिटल में, इम्पॉसिबल है। अच्छा वो भी मुमकिन नहीं है, ठीक है भक्ति विधान से हम लोग ना एक यात्रा निकलते हैं, पूरी द्वारका में ही निकलेंगे, आपके स्टाफ लोगों को आप थोड़ा कुछ कुछ लोगों को भेज दो, हो सकता है कि ये यात्रा केवल हिंदुजा के स्टाफ के लिए, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है। आज भी 20 साल के बाद में भक्ति विधान में जब भी जन्माष्टमी का उत्सव होता है और मैं सारे सब लोगों को नाच करते हुए देखता हूँ ना कीर्तन में, डॉक्टर भी नाच कर रहे हैं, मैनेजर भी नाच कर रहे हैं, हाउसकीपिंग वाले भी कर रहे हैं, मेंटेनेंस वाले भी कर रहे हैं, आईटी वाले भी, सब लोग मिलके, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि डॉक्टर लोग खाली उधर नाचेंगे, नर्स लोग यहाँ नाचेंगे, मैनेजर लोग अपना अलग नाचेंगे, वो मिक्स नहीं हो जाते, ऐसा नहीं, एकदम दिल खुलास तरीके से मिक्स होके डांस कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी आज भी आश्चर्य होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नामुमकिन चीज़ है, लेकिन ये हो रहा है आपके आंखों के सामने, आश्चर्यकारक वस्तु घटना आपके आंखों के सामने निरंतर हो रही है। दुनिया भर में जगन्नाथ की रथ यात्रा साल में एक बार होती है, पहले जमाने में तो केवल जगन्नाथ पुरी में ही हुआ करती थी और दुनिया में कहीं होती नहीं थी, फिर प्रभुपाद जी ने उसको जगह जगह शुरू किया, लेकिन एक साल में एक बार, नागपाड़ा में एक साल में एक बार, शिवाजी पार्क में एक साल में एक बार, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में एक साल में एक बार, न्यूयॉर्क में एक बार, ऐसे। लेकिन भक्ति विधान में रोज होती है, एवरी डे होती है कि नहीं होती? रथ में बैठकर भगवान आपको दर्शन देने को घर पे आपके सामने आ रहे हैं आपके, साल में एक बार बाहर भी निकलते हैं, बड़े वाले की छोटे वाले रोज बाहर निकलते हैं, रोज कृपा करते हैं, रोज दर्दी लोगों को जाके मिलकर उनकी कृपा बरसाते हैं। ये सब आपके लिए है, खाली मरीजों के लिए नहीं है। स्टाफ भी उसमें प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं भगवान से, प्रार्थना करते हैं। तो आप लोगों को हमारी विनती है कि अधिक मास का ये कथा मैंने आपको समझाया इसलिए कि अगर अधिक मास है और उसका इतना परम लाभ है और आप नहीं ले रहे हो तो क्या कह सकते उसको, तो दुर्भाग्य कह सकते, बैड लक बोल सकते। ऐसे लोग आप हाथ फैला दो ना, जहां तक हाथ पहुंचेगा ना वहां 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, खाली हाथ फैलाना जरूरी है बस। अब बोले कौन हाथ फैलाएगा, दुखेगा वो क्या आपको बोलेंगे कि आप ना खाली ट्रेन का टिकट निकाल के यहाँ से चर्चगेट थिएटर, चर्चगेट में उतर के इरोस थिएटर के पास जाओ, वहां पर एक कोड वर्ड है, कोई आदमी मिलेगा आपको 10 करोड़ रुपया दे देगा। बोलेगा कौन जाएगा, इतना गर्मी में, इतना बॉम्बे में पसीना आता है, इतना ट्रेन में गर्दी होती है और वो इतना सफर करना है उधर जाके, नहीं भाई हमसे नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे, बोले कितना बैड लक है, देखो इतना सा थोड़ा सा काम करना है, इतना करने से इतना लाभ मिलने वाला है, फिर भी उसको आलस्य के वजह से या श्रद्धा नहीं है, समझो विश्वास ही नहीं उस बात पर उसको, क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कोई देगा क्या मुझे, कुछ भी कारण हो नहीं लेता हो तो क्या बोलेगा, अरे बैड लक हो गया उसका। लेकिन अगर उसको यकीन हो गया और वो बीमार है बेचारा, बुखार में है, फिर भी बोला नहीं तू साथ में चल मेरे, अपना एम्बुलेंस भी जाते हैं और कैसा भी करके कोड वर्ड लिया उसने, वो सब कुछ पता करके पहुंच गया, वो सोते सोते एम्बुलेंस में गया, उधर से वो कोड बोला और 10 करोड़ का डब्बा मिला उसको, तो फिर वो बोलेगा क्या सच है कि झूठ है, तभी चर्चा करेगा वो, नहीं करेगा। ऐसा ही भाग्य भक्ति विधान, थोड़ी श्रद्धा रखो तो नॉलेज प्राप्त करो, फिर देखो यहाँ पर आपको कितना लाभ है आपको। और स्पिरिचुअल केयर यहाँ पर ना कोई चार्ज नहीं है उसका, आपको अगर कथा में आना है मंगलवार के तो कुछ फीस देना है आपको, ये आज शुक्रवार का क्लास है तो आपको कुछ कूपन काटना है उसका, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ फ्री में ऑन ड्यूटी, कोई नहीं करता गुरु जी। लोग बोलते क्या ड्यूटी आवर में, 1-1 घंटा देखो 25-30 स्टाफ बैठे यहाँ पर, इनका 1 घंटे का कितना पगार हो गया, करो गिनती करो 1 घंटे 8 घंटे में कितने होते हैं, उसके 1 घंटे का निकालो और 35 लोग से मल्टीप्लाई करो, इतना नुकसान कर रहे हैं आप, धंधा भी बंद है, सब लोग आनंद ले रहे हैं ये बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। और आप बोलते हो कि हर हफ्ते में कहाँ कहाँ करते रहते हो, उधर हॉस्टल में चलता है, पेंटरपाड़ा में चलता है, उधर ICU में भी होता है, कितना बिजनेस आवर आप वेस्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति विधान में अगर प्रभुपाद की छत्रछाया में आप आए हो, यहाँ पर आप नौकरी कर रहे हो, पगार ले रहे हो, तो साथ में भगवान के विषय में ज्ञान भी देना प्रभुपाद जी की इच्छा है, तो जेब खर्च करके भी आपको देंगे, नहीं लेंगे लेंगे आपकी इच्छा है, लेकिन देंगे जरूर, और आप लेंगे तो आपका ही कल्याण है, उसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, आपको परम कल्याण है। पगार लेंगे तो पगार कल खत्म हो जाएगा, अगर वापस पगार लेना पड़ेगा अगले महीने में वो भी खत्म हो जाएगा, जितना कमाओगे उतना खत्म हो जाएगा, ये जो कमाओगे ये प्राप्त करोगे वो खत्म नहीं होने वाला है, आपके अक्षय खाते में जमा हो जाएगा, जितना भी समय आपने यहाँ बिताया है आपके पुण्य खाते में जमा हो जाएगा। आपको इच्छा थी नहीं थी, इंटरेस्ट था नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ थे, इतना भी आपका जो अकाउंट में जमा हो जाएगा कि उधर था आदमी, ऐसा लाभ है इसके अंदर, कोई नुकसान है ही नहीं। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी प्रयास इसमें कोई करता है ना उसको बहुत भयंकर कष्ट से आगे मुक्ति मिल जाती है। त्रायते महतो भयात, महतो मतलब भयंकर, जो भय होता है आगे उससे भी स्वल्प छोटा सा काम करने से वो मुक्त हो जाता है, और कभी समाप्त होने वाला धन नहीं है। मेरा भाई क्या बोलती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, खर्च न छूटे। ये धन ऐसा है कि वो खर्च करेंगे तो समाप्त नहीं होगा। मैंने आपको 10 रुपए दिए तो जेब में 50 थे तो कितने बचे, 40 बचे, इनको 10 दिए तो 30 बचे, लेकिन एक दिन ऐसा है, अभी जब मुझे कथा पता है ना, अभी मैंने आपको कथा बताई, तो मैंने आपको कथा बताई तो मैं कथा भूल गया क्या बाद में, यहाँ से डिलीट हो गया वो, ऐसा हो गया नहीं, और डबल याद आ गई मुझे, क्योंकि मैंने आपको सुनाई तो मेरा रिविजन हो गया, और वो वहाँ डबल स्ट्रांग से अंदर बैठी है कथा, वो आगे सब लोगों को बताऊंगा, सब प्रोग्राम में, और आपको भी बताओ गई। तो मैंने खर्च किया लेकिन थोड़ा कम हो गया मेरा कुछ, तो खर्च न छूटे, चोर न लूटे, अगर 100 रुपये इधर रखा, 500 इधर रखा तो शायद कोई पॉकेट मार सकता है, सो गया मैं तो कोई उड़ा सकता है उसको, लेकिन ये धन आप चोरी नहीं कर सकते, मैं दूंगा आपको, ले लो आप, चोरी क्यों करते हो, ले लो। खर्च न छूटे, चोर न लूटे, और क्या, दिन दिन बढ़त ही जाए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च तो होगा ही नहीं लेकिन बढ़ेगा दिन ब दिन, वही चीज करने से बढ़ते जाएगा। ऐसा कोई धन है क्या दुनिया में? ये दुनिया का सारा धन तो खत्म होने वाला है, चोरी करने लायक है, और बढ़ेगा तो है ही नहीं, वो कम होने वाला है। ये धन ऐसा है कि वो बढ़ने वाला है, उसको ले लो आप, क्यों कंजूसी करते हो? लोग देने में कंजूसी करते हैं, एक तो लेने में कंजूसी होगी ना, कोई दे रहा है तो भी लेने में भी आलस्य है। ऐसा क्यों करते हैं? और भी फ्री में मिल रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज फ्री में मिलने से ना थोड़ा तो वैल्यू कम होता है उसका। कोई फ्री में कथा में बुला रहा है तो आपको लगेगा क्या, फ्री में कथा में फी लगाए ना, फी, वो रमेश भाई ओझा की कथा चल रही है, उस पर 5,000 का टिकट निकालना पड़ेगा तो ही आपको सीट मिलेगा, तो फिर शायद लोग लाइन लगाएंगे, बुकिंग करेंगे उस कमरे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, 5,000 रुपये चार्ज है उसका। और वही रमेश भाई ओझा बैठेंगे बोलेंगे आज की कथा फ्री, तो शायद कोई नहीं आएगा, सुने क्या है, तो फ्री में कौन आएगा कुछ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी चीज भी फ्री में देंगे ना तो उसका वैल्यू नहीं होता है, लेकिन फिर भी संत लोग भगवान का उपदेश का चार्ज नहीं लगाते, भगवान का उपदेश फ्री होता है। भगवान ने फ्री दिया अर्जुन को, चार्ज लगाया कि अर्जुन को बोला तो भी आपको सलाह चाहिए, पहले इतना फी भरो फिर मैं सलाह देता हूँ आपको क्या करना युद्ध में, ऐसा नहीं है भगवान ने किया। धुंधुकारी ने बोला मेरे लिए कुछ करना, बोले कैसे कैसे करूंगा, कथा करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, इतना चार्ज मिलेगा तो करूंगा, फ्री में किया कथा उसने, दो बार किया उल्टा। तो भक्ति की चीज फ्री में मिलती है, भगवान ने फ्री में दे दिया है, हमने भी फ्री में देना है, आपको लेना है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए, आप लेंगे तो आपके जीवन का उद्धार होगा, मेरा जीवन का उद्धार तो हो चुका है क्योंकि मैंने उसको ले लिया है, पूरा जीवन में अपना लिया है उसको, मेरा उद्धार तो हो ही चुका है, मुझे पूरा यकीन है उस बात का। आपको अपना उद्धार करना है, दुनिया का उद्धार छोड़ दो, अपना सोचो, अपना हो जाएगा तो फिर आप चुप नहीं बैठ पाएंगे, आप दूसरों को बताएंगे। हाँ 1 करोड़ रुपए मिला ना समझो आपको, तो किसी को नहीं बताएंगे एकदम चुपचाप रहेंगे, ज्यादा कुछ बड़ी चीज खरीदेगी भी नहीं, क्योंकि लोगों को डाउट आएगा, अरे इतनी बड़ी गाड़ी कैसे आएगी, इसके पास कुछ मिला होगा उसको, वो भी नहीं करेंगे, खाली बैंक में रखेंगे, धीरे धीरे एंजॉय करेंगे उसको। लेकिन भगवान के विषय में धन प्राप्त हुआ ना, आप चुप नहीं बैठ सकते, आप सबको जाके बोलेंगे आप भी आ जाओ ले लो, मैं क्यों आ रहा हूँ, मेरे ऑफिस में काम नहीं मुझे बोल, कि मुझे लगता है कि अधिक मास है, अपने परिवार के लोग काम करते हैं हमारे लिए, हमारा जो काम है उसको चला रहे हैं, तो उनको अधिक मास का नॉलेज देना मेरा फर्ज है, कि आप हो हमारे साथ तब तक तो कम से कम नॉलेज प्राप्त करो, आगे कौन देगा आपको, रिलायंस कंपनी में जाएंगे तो कौन आपको अधिक मास के बारे में बताएगा। खाली मोबाइल कैसे बेचना आपको सिखाएंगे, बस ट्रिक सिखाएंगे, पैसा मोबाइल में बेचना है और क्या क्या बनाना है उसके अंदर, ये बताएंगे क्या कि आपने भगवान का नंबर जब किया क्या, आज करो या मरो ना, उनको क्या करना है, काम पे आओ टाइम पे, वापस आने का टाइम नहीं है, टाइम पे आने का खाली, बस कब जाने का पूछना नहीं है, काम हो गया तो 11:30 बजे बॉस बोला जाओ तो जाने का, सुबह फिर 8 बजे आने का वापस, यही बोलेंगे आपको, ये पूछेंगे ना आपकी मम्मी कैसी है, बीमार थी ना वो, एडमिट थी, कोई मतलब नहीं उनसे, आपकी बच्ची बीमार थी, आपका डिलीवरी में वाइफ का तकलीफ हो गया था क्या, आई डोंट केयर, सुबह 8 बजे आना है, नहीं पसंद है छोड़ के जाना है, भगवान का नाम किया गया तो वो स्वप्न की बात है, कि मेरा बॉस मुझे पूछ रहा है स्वप्न में कि तुमने भगवान का नाम लिया क्या, हमें झक गया एकदम, अरे अचानक मेरे बॉस ने ऐसे कैसे पूछा मुझे, हाँ पता चला ये सत्य नहीं था, ये स्वप्न था। यहाँ पर आपको सत्य में पूछेंगे, कि आपने लिया क्या, अधिक मास का व्रत लिया क्या आपने, इसका इतना इतना लाभ है, ले लो उसको, ज्यादा कुछ लेना नहीं आपको, बस एक 15 मिनट मोबाइल चलाना कम कर दो और 2 माला कर लो, क्योंकि मोबाइल 15 मिनट चलाओ 150 मिनट चलाओ, लाभ क्या है आपको उसका, 0 लाभ है, वेस्ट ऑफ टाइम है पूरा, कुछ भी नहीं है उसके अंदर दाम। वो अगर 15 मिनट भी कम करेंगे ना तो 15 मिनट पैदा हो जाएंगे, वो 15 मिनट में थोड़ा भगवान का नाम पुकारो, 2 माला फेरो, आपके अक्षय खाते में जमा हो जाएगा, वो अनंत कल्याण का कारण बनेगा, सब शुभ मंगल हो जाएगा उससे, अपवित्र सब नष्ट हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएंगे, कष्ट मिट जाएंगे। इसलिए आपको बताने के लिए आए हैं, अभी 16 तारीख को शुरू हुआ है मई को, 14 जून तक चलेगा, तो रोज एक भगवान के लिए आप नियम बना दो, आपकी तरफ से कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, आपने जो नियम बनाया अपने पास रखो, रोज उसको पालन करो, भगवान से प्रणाम करो, आपको तो हमारे तो जगह पे ही मंदिर है, सब जगह पर जहाँ पर है वहीं पर मंदिर पूजा होती रहती है, भक्ति विधान में है, इधर है, बाहर गए तो मीरा रोड का इस्कॉन का मंदिर है, एक बार दर्शन भी कर सकते हो, क्या बुरा है, बुरा है इसमें, 3 दिन घंटा पिक्चर थिएटर में जाके बैठ जाते हैं, इतना बिजी है बोलते हैं, टाइम नहीं बोलते हैं, लेकिन 3 घंटा पिक्चर में जाके लेटेस्ट मूवी देख के आते हैं, वो 3 घंटा कहाँ से निकलता है, तो सर 5 मिनट निकाल सकते हो, भगवान का दर्शन कर सकते हो, बस जाके सो सकते हो, क्या बात है। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।